ग्रामीण जीवन में प्रचलित भाषा से लेकर शिष्ट भाषा तक सभी भाषा का प्रयोग हुआ है। तत्सम, तद्भव, भदेश, अनगढ़, अश्लील, विलक्षण, अर्ध तत्सम आदि तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं तो संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग इतना प्रभावशाली ढंग से हुआ है कि आम पाठक के कुछ समझ में ही नहीं आता। अंग्रेजी, उर्दू, फारसी शब्दों का प्रयोग तो आम बात हो गई है। जैसे सुनो, मैं गई रेशमी उम्र पर, बहुत ही गर्म प्रेस रख दी। उपयुक्त कविता में प्रेस जैसे अंग्रेजी शब्द का प्रयोग बेबाक किया गया है। कई दिनों तक लगी मात पर छिप कलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। इस उदाहरण में गश्त एवं शिकस्त शब्दों को उर्दू भाषा से लिया गया है। आधुनिक कवि मूलतः हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किए हैं। हिंदुस्तानी भाषा मूलतः हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जापानी भाषा का स्वरूप ग्रहण कर लिया है। नई कविता में मूल रूप से व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। तत्पश्चात विवेचनात्मक, विचारात्मक, ऐतिहासिक, भावात्मक एवं कारुणिक शैली का प्रयोग हुआ है। व्यंग्यात्मक शैली का एक उदाहरण, मंदिर निर्माण रोज, प्रतिमा स्थापन रोज, पूजा कभी कभार। नई कविता में वस्तुपरक विवेचना काफी प्रभावशाली है। एक विषय हेतु तर्क का सहारा लेते हुए व्यापक विवेचना प्रस्तुत की गई है। तार्किक विवेचना का एक महत्वपूर्ण उदाहरण इस प्रकार है, धर्म नहीं होगा तो समाज नहीं होगा, समाज नहीं होगा तो व्यक्ति नहीं होगा, व्यक्ति नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। नई कविता के कवि वृंदगण बौद्धिकता के प्रतीक एवं विज्ञानवाद के पोषक हैं। उन्होंने अतीत के गर्भ से बुद्धिवादी व्यवस्था के अनुरूप चरित्र ढूंढ निकालते हैं। ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक कथाओं के चरित्र को मानवीय स्तर पर प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते हैं। कोलरिज, T.S. इलियट, Y.V. Yeats, एमर्सन जैसे कवियों से प्रभावित नजर आते हैं। नई कविता के कविगण की विचारात्मक शैली जॉहन्सन के कॉन्सीट जैसे द्वंद्ववाद से भी प्रभावित हैं। पौराणिक चरित्र का व्यवहारिक एवं बौद्धिक प्रयोग नए कवियों की एक विशेषता रही। उदाहरण के लिए, मैं मुझे स्वीकार, मेरे वन अकेलेपन, परिस्थिति के सभी काटे, ये दधीची हड्डियाँ, हर दा हमें तपले, न जाने कौन देवी, आसुनी संघर्ष बाकी हो अभी। आधुनिक कवियों में ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक स्थलों की विवेचना एक नए सूर्य में प्रस्तुत करते हैं। जैसे, मित्रों तीसरा रास्ता भी है, मगर वह मगध, अवंती, कौशल या विदर्भ होकर नहीं जाता। जहाँ एक और नई कविता के रचनाकार ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व के गाथा को वर्तमान में नवराग में जीवित करते हैं, वहीं दूसरी ओर पूर्ण विज्ञानवाद को प्रश्रय देते हैं। त्रिलोचन शास्त्री का ध्वनि ग्राहक, धर्मवीर भारती का अंधा युग, अज्ञेय जी का औद्योगिक बस्ती जैसे कविताएं इस विचारधारा एवं शैली की प्रतीक हैं। उपयुक्त विवेचनाओं से यह सिद्ध होता है कि नई कविता के रचनाकार गागर में सागर भरने का प्रयत्न एक नई व्यवस्था के अनुरूप करते हैं। अतीत काल से लेकर अर्वानीत काल तक समग्र विषयों पर अपनी संपूर्ण दृष्टि डालते हैं। गद्य काव्य की संपूर्ण विशेषता अपने में सजोए हुए निजी काव्यगत शैली का उद्धत करते हुए एक नए काव्यांजलि को प्रस्तुत करते हैं, जो मन को स्पर्श तो करती है तथा उससे कहीं अधिक मस्तिष्क को झंकृत कर देती है। प्रश्न: छायावादोत्तर कविता या नई कविता के भाव पक्ष अथवा भावबोध की भावनाओं की विवेचना कीजिए। उत्तर: नई कविता विश्व वर्चस्व से प्रेरणा ग्रहण करके आज के प्रत्येक पल बदलते हुए उस पद को अपने मुक्तक छंदों के संकेतों को तीव्र मंद गतिलय में अभिव्यक्त कर मानव के लिए भावभूमि प्रस्तुत कर रही है। यह कथन सुमित्रा नंदन पंत का था। नई कविता का भावबोध की अवधारणा युग सापेक्ष है। इन कविताओं में छायावाद के रहस्यवाद, आध्यात्मवाद, प्रकृतिवाद, पलायनवाद, कल्पना, संकल्पना, परिकल्पना, द्वितीयक आदि से परे होकर सत्य, शिव एवं यथार्थवाद की ओर उन्मुख हो गई। नई कविता में मानवतावाद, यथार्थवाद, मनोविज्ञानवाद, विज्ञानवाद, जनतंत्रवाद, साम्यवाद, जनतांत्रिक, समाजवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद, रूढ़िवादी परंपरा, अस्पृश्यतावाद, नवीन शिक्षा पद्धति, प्रांतीयता, राजनीतिक परिदृश्य, नया मानव, लघु मानव, समय का महत्व के साथ तर्कवाद, विज्ञानवाद आदि का विशेष रूप से समावेश हुआ है। नई कविता का मूल भाव। नई कविता का मूल भाव मनोवैश्लेषिक मनोविज्ञान पर आधारित है। आधुनिक काल में मानव का दृष्टिकोण पूर्णतः प्रत्यक्षीकरण पर आधारित है। मानव स्वभाव, रुचि, भाव, मनोभाव आदि उसके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को सुव्यवस्थित एवं संवर्धित करती हैं। नई कविता प्रयोगवाद एवं प्रगतिवाद के सम्मिश्रण एवं मंथन तथा चिंतन के संयुग्म से समन्वित होकर प्रस्फुटित होती है। इस दिशा में तार सप्तक प्रथम, उसके बाद तार सप्तक द्वितीय ने हिंदी काव्य साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की। प्रथम तार सप्तक 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जिसमें गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमेंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञेय सप्त कवियों की कविताएं परिलक्षित की गई। इसी प्रकार सन 1951 ईस्वी में तार सप्तक की दूसरी कविता संग्रह प्रकाशित की गई, जिसमें भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती जैसे कवियों को संग्रहित किया गया। दोनों ही तार सप्तक संग्रह से नई कविता का सूत्रपात हुआ। इन दोनों संग्रहों का यदि गहनतापूर्वक अध्ययन किया जाए तो सैद्धांतिक विश्लेषण विशेष रूप हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। नई कविता शब्द का प्रादुर्भाव सन 1945 ईस्वी में नए पत्ते के प्रकाशन के साथ आया। यह प्रकाशन श्री राम स्वरूप चतुर्वेदी और लक्ष्मीकांत वर्मा के सम्मिलित प्रयत्नों से संभव हुआ। नई कविता मानव जीवन के तथ्यपरक परिस्थिति है। आज़ादी के पश्चात भारतीय परिप्रेक्ष्य में अनेक परिवर्तन हुए। तानाशाही के स्थान पर जनतंत्रवाद का विकास हुआ। राजनीतिक गतिविधियों में व्यापक विकास की तेजी आई। नई कविता साहित्य समाज दर्पण है, जैसे मूल सिद्धांत पर आधारित है। देश काल, परिस्थिति और वातावरण के अनुसार नई कविता त्रिकोणात्मक तरीके से समाज को उद्वेलित किया। पहला, समाजवादी यथार्थ की भावना। दूसरा, व्यक्ति विद्रोह की अहमवादी नीति। तीसरा, मध्यम वर्गीय चेतना। इसके साथ ही नई कविता मूल रूप से तीन लक्षणों पर आधारित है। पहला, बौद्धिक जागरूकता। दूसरा, वैज्ञानिक विश्लेषण। तीसरा, नए मूल्य की स्थापना। डॉक्टर जगदीश गुप्त के अनुसार नई कविता कहने से आज निम्नलिखित अर्थों का बोध होता है, जिसका महत्व एवं क्रम निम्न है। पहला, वह कविता जो नए मूल्य अभिप्रेरित हों, विशेषतः स्वातंत्र्योत्तर या 20वीं सदी उत्तरार्ध के। दूसरा, वह कविता जो काव्य की निरंतर नई लगने वाली उर्वरक रचना शक्ति एवं अनुभव के अलक्षित नूतन स्तरों से संबद्ध हो। तीसरा, वह कविता जिसमें पूर्ववर्ती स्थिति के निषेध के साथ अभिव्यंजना की अपरिचित प्रणालीय कथन की विचित्र एवं अप्रचलित भंगिमाएं और अद्यतन प्रभाव को ग्रहण करने तथा नए नए नामों से अपने व्यक्त करने की प्रवृत्ति हो। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने नई कविता के निम्न भाव प्रकट किए हैं। असल में कविता की पहली विशेषता है जीवन के आस्वादन में विश्वास। नई कविता का दूसरा लक्षण है पार्थिव जगत की समग्रता का ग्रहण। नई कविता की तीसरा विशेषता है प्रसानुकूलता तथा चौथी विशेषताएं भाव संकुलता के अनुरूप लय तथा भाषा का अन्वेषण है। इस प्रकार नई कविता एक साहित्यिक आंदोलन था या साहित्यिक परिवर्तन की नई दृष्टि थी। नई कविता का भावबोध समय परिवर्तन के साथ आए सामाजिक एवं मानसिक परिवर्तन का एक मनोवैश्लेषिक यथार्थवादी वैज्ञानिक चित्रण है। प्रश्न, छायावादोत्तर कविता के भाव पक्ष अथवा भावबोध की भावनाओं की विवेचना कीजिए, या नई कविता का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, या नई कविता के उत्थान में समकालीन समाज का क्या प्रभाव है, या नई कविता एवं समाज के आधार पर सिद्ध करें कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। उत्तर, साहित्य समाज का दर्पण होता है और साहित्यकार समाज का ही एक अंग होता है। वह समाज से प्रभावित होकर साहित्य का सृजन करता है। उसके आविर्भाव में सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का प्रमुख योगदान रहता है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है। समाज के रीति रिवाज, परंपरा, सभ्यता, संस्कृति के साथ तात्कालिक देशकाल, परिस्थिति और वातावरण का भी साहित्यकार के सृजन पर पूर्ण प्रभाव पड़ता है। नई कविता का उदय भारत स्वतंत्रता काल में हुआ। यह काल भारत के संरचना काल का समय था। पंचवर्षीय योजनाएं विकसित की जा रही थी, किंतु यह पंचवर्षीय योजनाएं भी भारतवासियों का गरीबी और भूख को न मिटा सकी। फलतः धनी और धनी होते गए और गरीब होते गए। इस काल में पंडित नेहरू, जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अनेक प्रकार से भारत को समृद्ध बनाने का प्रयत्न किया, किंतु पाकिस्तान और चीन के हमले में भारत को आर्थिक रूप से विदीर्ण कर दिया। फलतः चारों ओर से आंदोलन होने लगे। साम्यवादी दल मजदूरों एवं किसानों के आंदोलन में जुट गए। सर्वत्र रोटी रोजी के लिए संघर्ष होने लगे। सामान्य जनों की दशा अभावों एवं कमियों से भर गई। इस पर कवि धूमिल व्यंग करते हुए लिखते हैं, बच्चे भूखे हैं, माँ के चेहरे पर पत्थर, पिता जैसे कांठ अपने ही आग में जले हैं, ज्यों सारा घर। जिस समाज में आर्थिक हीनता है, उस समाज में सर्वत्र संघर्ष ही संघर्ष व्याप्त है। परिणाम स्वरूप उस भारतीय समाज में सर्वत्र असंतोष एवं अराजकता की ओर बढ़ने लगा। समाज में मूलतः अशिक्षा, धार्मिक रूढ़िवादिता, जातीयता, नारी की दयनीय स्थिति आदि प्रमुख हैं। इस काल का कवि सत्य एवं यथार्थ को पूर्ण रूप से आत्मसात कर लिया। वह विद्रोही स्वभाव का हो गया। महान छायावादी कवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी प्रयोगवाद की उन्मुख होने लगे। उनकी कविता में विद्रोह एवं व्यंग के स्वर प्रस्फुटित होने लगे। उनकी तोड़ती पत्थर कविता उनके विद्रोही स्वभाव का महत्वपूर्ण प्रस्तुतिकरण है। ग्रामीण समाज तो और भी दयनीय स्थिति में पहुंच चुका था। ग्रामीण दशा का वर्णन करते हुए कवि कहता है, मेरे गांव में वही आलस्य, वही ऊब, वही कलह, वही तटस्थता हर जगह और हर रोज, और मैं कुछ नहीं कर सकता। यह पंक्तियां धूमिल की थी। नगर का जीवन त्रिषित नहीं था। नैतिकता के मापदंड तेजी से बदल रहे थे। कवियर दिनकर जी तात्कालिक समाज का वर्णन करते हुए लिखते हैं, लोगों के पारस्परिक मिलन के अवसर तो बहुत हो गए हैं, मगर इस मिलन में हार्दिकता का प्रभाव नहीं होता। मानवीय संबंधों का घनत्व नहीं आ पाता। दफ्तरों, ट्रामों, बसों, रेलों, सिनेमा घरों, सभाओं, कारखानों में आदमी हर समय भीड़ के बीच अकेला होता है। तत्कालीन समाज में जातीय रूढ़िवादिता, अस्पृश्यता, स्त्रियों की दयनीय स्थिति, असमानता, सांप्रदायिकता, संयुक्त एवं विभक्त परिवार प्रथा, दहेज प्रथा, सती प्रथा, परिवार प्रथा, प्रांतीयता, भाग्यवादिता, निरक्षरता, पाश्चात्य संस्कृति आदि अनेक बुराइयां समाज में तेजी के साथ फैल रही थी। नई कविता के कवि वृंद समाज के वास्तविकता का पूर्ण प्रत्यक्षीकरण किए, उसे अपनी कविता में यथार्थ को प्रस्तुत किए। नई कविता दीन हीन निर्धन गरीब बेवस मजदूर जमलूम विधवा विकलांग असहाय निसहाय दलित शोषित वंचित मजदूर किसान कामगार आदि को नई शक्ति प्रदान की, आत्मबल दिया, आंदोलन करने की शक्ति प्रदान की, हक के लिए लड़ना सिखाया, संसद से सड़क तक को तार तार कर दिया, समाज में बढ़ते हुए पापासुर भ्रष्टासुर दुष्टासुर एवं कामासुर के रहस्यों को खोला, पूंजीवादी तानाशाही हिटलरशाही के साथ संघर्ष करने की ताकत दी। फलतः नई कविता ने समाज के निरीह जनों की वास्तविक वाणी बन गई। उदाहरण के लिए, जब कवि यथार्थ सत्य बोलने अत्याचारी हिलने डुलने, नई कविता सामाजिक क्रांति सामाजिक न्याय एवं सामाजिक अधिकार का नारा समाज में बुलंद कर दिया। अज्ञेय जी द्वारा लिखित कविता औद्योगिक वस्ती ने सरकार की आंख खोल दी। पर्यावरण युद्ध प्रारंभ हो गया, नगरों से उद्योग दूर किए जाने लगे इत्यादि। नई कविता नवीन सामाजिक क्रांति व्यवस्था की प्रतिपादक है। भारतीय जनतंत्र में जाति धर्म भाषा प्रांत लिंग गोत्र वर्गवाद संप्रदायवाद पंथवाद व्यक्तिवाद समाजवाद पूंजीवाद आदर्शवाद दलितवाद आतंकवाद उग्रवाद आदि न जाने कितने वादों का क्रांति स्वर एक साथ गुजने लगा। नई कविता के कवि धूमिल महाराज रोटी और संसद कविता में हुंकार करते हैं, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। रघुवीर सहाय की कविता नेता क्षमा करें, धर्मवीर का अंधा युग, अज्ञेय का सांप, केदारनाथ की रोटी आदि सहस्त्र कविताएं तत्कालिक समाज के यथार्थ को चीख चीख कर पुकार रही थी कि सर्वत्र अमानतावाद की साम्राज्य है। इस प्रकार नई कविता समकालीन समाज की यथार्थवादी प्रस्तुतिकरण है। कवि युग का पूर्णतः नेतृत्व करता है, समूचे समाज को वास्तविकता से उद्बोधित करता है, साथ ही अत्याचारी दुराचारी भ्रष्टाचारी समाज से संघर्ष करता हुआ प्रतीत होता है। प्रश्न, नई कविता जातिवाद एवं धर्मांधता रूढ़िवादिता का विरोधी है, इस कथन की विवेचना कीजिए। उत्तर, नई कविता नव क्रांति की द्वार है। नई कविता ने अपने सारे बंधन त्याग कर सारे घूंघट उतार कर जातिवाद के सरदारों को ललकारी, मानवतावाद को जातिवाद में न बांधो, सांप्रदायिकता एवं धर्मांधता से मानव को मत मारो, मानव मानव एक समान, नई कविता का महाअभियान मानो नई कविता के कवियों का नव कविता क्रांति का शुभारंभ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार अछूतों को विशेष सुविधाओं का प्राविधान किया। इसका परिणाम हुआ कि दलितों एवं अछूतों का तो थोड़ा विकास हुआ, किंतु इसके विपरीत अन्य जातियों में कट्टरवादिता उत्पन्न होने लगी। गांव का भाईचारा सिमटता नजर आने लगा। प्रत्येक जाति का अलग अलग गोलबंदी होने लगा। कहीं कहार, कहीं यादव, कहीं विश्वकर्मा आदि की सभा होने लगी और अगले एवं पिछड़ों के बीच संघर्ष होने लगा। एक समय तो ऐसा आया कि जाति व्यवस्था को लेकर हत्या, दर हत्या एवं आत्मदाह होने लगा। धर्म परिवर्तन की घटनाएं तेज होने लगी। जातीय संघर्ष के साथ सांप्रदायिक संघर्ष और तेज हो गए। समूचे देश में सांप्रदायिक संघर्ष होने लगे और यह संघर्ष तेज हो गए। सांप्रदायिक संघर्ष कहीं हिंदू बना मुस्लिम तो कहीं हिंदू बना ईसाई आदि प्रत्यक्ष रूप से होने लगा। प्रांतीयता के नाम पर महाराष्ट्र मराठियों के लिए तो बंगाल, बंगालियों के लिए बंगाल, कश्मीरियों के लिए कश्मीर। इस प्रकार समाज में संघर्ष एवं अराजकता का वातावरण व्याप्त हो गया। नई कविता के कवि इस सच्चाई को बड़े ही मार्मिकता के साथ देख रहे थे। वे सच्चाई पर अपना विरोध किए। उनका विचार था कि ऐसी जीवन शैली मानवता के लिए घातक है। अज्ञेय जी ने लिखा, बड़े चाहे बोझ जितना शास्त्र का, इतिहास का, रुचि के विन्यास का या सबूत का, काम नहीं ललकार होती जिंदगी का। भारत अनेक जाति एवं धर्मों तथा संप्रदायों का देश है। यही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे संप्रदाय के लोग रहते हैं। इनके अलावा जैन, बौद्ध, पारसी के संप्रदाय के मध्य भारी संघर्ष व्याप्त होते हैं। इतना ही नहीं, वोट के नाम पर राजनीतिक दल भारी संघर्ष कराते न चुकते हैं। सांप्रदायिकता के चलते भारत का विभाजन भी हुआ, किंतु आज हिंदू और मुसलमान के मध्य कहीं न कहीं प्रतिदिन संघर्ष होता रहता है। भारत भूषण अग्रवाल अपनी कविता में कहते हैं, कोटि मनुज कष्टों के टूटे बंधन, आदमी रचे नए नए समाज का भवन, ओ भविष्य सूर्य धरो मुक्ति के चरण। सांप्रदायिकता का जहर आज भी चरम सीमा पर है। लखनऊ, मुरादाबाद, बंबई, मऊ, वाराणसी, अलीगढ़, बिहार आदि अनेक स्थानों पर सांप्रदायिक संघर्ष का भय प्रतिदिन बना रहता है। गिरिजा कुमार माथुर जी इस सांप्रदायिकता के भाव पर प्रहार करते हुए कहते हैं, वह नहीं इंसान की है सभ्यता, स्वार्थ लालच युद्ध जिसके देवता। जातीयता एवं सांप्रदायिकता के साथ धार्मिक अंधविश्वास भी भारतीय समाज में सदियों के साथ पल रहे हैं। भारत में प्रायः सभी धर्मों के अलग अलग अनेक पंथ हैं, जैसे हिंदू धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, शाक्त धर्म, मुस्लिम धर्म,
आदि संप्रदायों में नए नए पंथ का विकास हुआ है। सारे पंथों के अनुयायी सदा ही एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। इन पंथों के धर्मगुरुओं में आपस में भी बड़ा संघर्ष है। इसके अतिरिक्त नए धर्मगुरु अपना नवीन पंथ चलाने हेतु बराबर अन्य धर्मों को गलत बताते रहते हैं। साथ ही धर्म को राजनीति से जोड़कर समाज तनाव उत्पन्न कराते रहते हैं। एक ओर ये धर्माचार्य हर प्रकार के राग राश में लीन है, दूसरी ओर भूख और सर्वत्र भूख और अभाव का साम्राज्य व्याप्त है। जैसा कि धूमिल ने लिखा है, भूख ने उन्हें जानवर कर दिया है, संशय ने उन्हें आग्रहों से भर दिया है, फिर भी वह अपने हैं, अपने हैं। जीवित मनुष्य भविष्य के सुंदरतम सपने हैं। इस प्रकार नई कविता के कवि वृंद समाज में व्याप्त जातीयता, रूढ़िवादिता एवं धर्म पर करारी चोट करते हैं तथा समाज को जागृत कर यह कहना चाहते हैं कि मानव भक्षी मानव को तिरस्कार करें, क्योंकि यदि मानवता मिट गई तो समाज के मिटते देर नहीं। यदि जाति, धर्म, भाषा, लिंग, गोत्र के नाम पर ऐसे ही संघर्ष होते रहे तो एक दिन समूचा मानव समाज दानवता में परिवर्तित हो जाएगा। अतः नई कविता के कवि समाज के विद्रूप से संघर्ष करते हुए प्रतीत होते हैं। वे समाज में सत्यम, शिवम, सुंदरम की स्थापना हेतु दृढ़ प्रतिज्ञ नजर आते हैं। प्रश्न: नई कविता पर राजनीतिक प्रभावों का वर्णन कीजिए, या नई कविता राजनीतिक समस्याओं पर किस प्रकार प्रहार करती है, या नई कविता में राजनीतिक दशा एवं दिशा का उल्लेख कीजिए। उत्तर: राजनीति एवं साहित्य का बड़ा ही घनिष्ठ संबंध रहा है, आज भी है। नई कविता एक नवजागृति की क्रांति थी, आजादी की क्रांति थी, सत्य की क्रांति थी, धर्म की क्रांति थी, न्याय की क्रांति थी, जनात्मा की क्रांति थी। नई कविता के प्रत्येक कवि में यथार्थता की क्रांति की ज्वाला धधक रही थी। श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हुंकार भरे हुए शब्द में कहते हैं, अब मैं कवि नहीं रहा, एक काला झंडा हूँ, 53 करोड़ भावों के बीच मातम में खड़ी है मेरी कविता। काला झंडा क्यों हूँ? क्योंकि सर्वत्र हिंसा, लूट खसोट, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, उग्रवाद, आतंकवाद। नव भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सांप्रदायिकता की आग में पागल एक व्यक्ति ने 30 जनवरी 1948 को मौत की नींद सुना दिया। नई कविता चित्कार उठी, काला झंडा लेकर ललकार उठी, गांधी का नारा रंग लाया कहीं हड़ताल, कहीं घेराव, कहीं अनशन, कहीं प्रदर्शन, सर्वत्र अराजकता ही अराजकता। साम्राज्य व्याप्त था। इतना ही नहीं, संपूर्ण भारतीय राजनीति सांप्रदायिकता, जातीयता एवं धर्मांधता में डूब गई। निर्धन वर्ग और अधिक निर्धन किंतु धनी वर्ग इस प्रकार नई कविता आज़ादी काल से लेकर अब तक के होने वाले राजनीतिक गतिविधियों पर नए कवि गणों ने खुलकर व्यंग को प्रस्तुत किया। अज्ञेय ने यथार्थ का चित्रण निम्न रूप में किया है। मुझसे कहा गया कि संसद देश की धड़कन को प्रतिबिंबित करने वाला दर्पण है। जनता को जनता के विचारों का नैतिक समर्पण है। लेकिन क्या यह सच है? या यह सच है कि अपने यहाँ संसद तेली की वह घानी जिसमें आधा है और आधा पानी है? इस प्रकार नई कविता राजनीति को तार तार देखा है, उसके चाल कुचालों को समझा है, राजनीति के दांवपेच धोखाधड़ी स्वार्थ नीति को परखा है, जनतंत्र को अपराधियों के समक्ष घुटने टेकते हैं। नई कविता के कवि अपनी क्रम से भयंकर युद्ध लड़ते हैं, सच्चाई को दर्शाते हैं, यथार्थ को प्रस्तुत करते हैं। नेता अधिकारी व्यापारी सत्ताधारी को उनके सत्कर्म का ज्ञान कराते हैं। निस्संदेह नई कविता नवीनतम क्रांति की प्रतीक है और राजनीति को नई दिशा प्रदान करने में सक्षम है। प्रश्न: नई कविता में लघु मानव के प्रस्तुतिकरण का समीक्षा कीजिए, या नई कविता के अंतर्गत लघु मानव के विवेच्य पर अपना विचार प्रस्तुत कीजिए। उत्तर: रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवार। ये पंक्ति रहीम की है। लघु मानव का विचार दर्शन हिंदी नई कविता का विवेच्य विषय रहा है। यह लघु मानव का विचार दर्शन यूरोप में भी युद्ध के बाद टूटे हुए मानवीय व्यक्तित्व के परिणाम स्वरूप उपस्थित हुआ। इसका दो रूपों में वर्णन हुआ। पहला हालो मैन या लघु मानव, दूसरा लिटिल मैन या लघु मानव। पश्चात साहित्यकार श्री टी एस इलियट ने अपनी रचना द वेस्ट लैंड में बंजर भूमि का वर्णन किया है, जहाँ का मानव कुंठित और आस्थाहीन है। इसी प्रकार संत साहित्य के अंतर्गत लघु मानव को फूटा घट कहा गया है। कबीर दास जी ने मनुष्य के बारे में कहा है, पानी केरा बुलबुला अस मानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा जस तारा प्रभात। रत्नाकर कवि ने गोपियों द्वारा लघु मानव के बारे में वर्णन किया है, जय हे बनी बिगरीन बारिदिता वारिध की, बूंदता बीले है बूंद विवश बिचारी की। फलतः लघु मानव अपनी अस्तित्व विहीनता लिए येन केन प्रकारेण जीवन व्यतीत कर रहा है। लघु मानव मानवीय समाज का वह अंग है जो मानवीय समाज के बुलंद महल की नींव है। लघु मानव मानवता का प्रतीक है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह मूलतः निष्कपट भाव का व्यक्ति है। उसमें नैतिकता के क्षोभ लोभ मोह संशय स्वार्थ की भावना नहीं है। वह जीता है कुछ करने के लिए, वह मरता है टूट टूट कर, जैसा कि सर्वेश्वर जी कहते हैं, हर क्षण एक दर्पण टूटता है, एक आकृति मरती है, चाहे वह ईश्वर की हो या आदमी की, शहर के घंटाघर की हो या अकादमी की। लघु मानव पर व्यापक विवेचना हुई है। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वर्मा जी लघु मानव को मानवता का मूलाधार मानते हैं। उनका विचार है कि लघु मानव पर हर परिस्थिति में मानव भूति से संबंध है। लघु मानव आडंबर युक्त विश्व बंधुत्व से कहीं अधिक समसामायिक दायित्व को विशेष महत्वपूर्ण मानता है। लघु मानव का आधार ही समसामयिक है। वस्तुतः लघु मानव का लघु परिवेश अनुभूति की गहराई और विवेक की मर्यादा से प्रकाशित होता है। लघु मानव की भविष्य की आस्था भी उसके परिवेश से आस्था में सार्थक होती है। लघु मानव यथार्थता एवं सत्यता पर जीवित रहता है। यदि उसमें मतवाद या बाह्य आडंबरी ईश्वरवाद की स्थापना की जाएगी तो निश्चय वह अपने स्वाभिमान की रक्षा न कर सकेगा। आज का लघु मानव ज्ञान विज्ञान कला कौशल से परिपूर्ण है। वह बल बुद्धि और विवेक को गिरवी रखकर बाह्य आडंबर को खोखले शब्दों पर विश्वास नहीं करता। लघु मानव की मनोवैज्ञानिकता संवेदना यथार्थता में निहित होती है। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, यह विचार ही लघु मानव की सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि लघु मानव की जीवन एक सच्चाई है, उसमें बनावटीपन नहीं है, उसमें संतोष है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समाना। फलतः लघु मानव मानववादी व्यवस्था का शूद्र नहीं है। लघु मानव किसी विशेष धर्म जाति भाषा प्रांत या संप्रदाय का प्राणी नहीं, अपितु वह विश्व मानव है। ऐसा नहीं कि लघु मानव का वर्णन मात्र नई कविता में ही हुआ है। इसके पूर्व भी भक्ति काल के साहित्य में भी समस्त भक्त कवि ने अपनी दैन्यता एकाकीपन अपनी लघुता को प्रतिपादित किया है। जैसे राम सो बड़ो है मोसो छोटो कौन, यहाँ ईश्वर की दासता को स्वीकार किया गया है। मूल प्रश्न है नई कविता में लघु मानव का क्या रूप है। लघु मानव निम्न गुणी है। वह अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार से मुक्त है। उसमें राक्षसी एवं शैतानी भावना नहीं है। वह मनुष्य है। उसमें मानवीय गुण है। वह मानवतावादी प्रेमी है। उसमें ईश्वरीय आत्मा विराजमान है। उसमें तप त्याग लगन श्रद्धा भक्ति प्रेम अहिंसा बंधुत्व की भावना भरी पड़ी है। लघु मानव में आत्मन बुद्धि और शरीर चारों आध्यात्मिक शक्ति विद्यमान है। इसी आत्मा मन बुद्धि और शरीर में पुराणवादियों ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की कल्पना की। नई कविता के कवि वृंद का लघु मानव आत्मबली है, स्वाभिमानी है। वह सत्यवद धर्मचर की नीति का पालक है। वह सत्कर्म को ही अपना सत्कर्तव्य समझता है। वह सांसारिक झंझावतों को झेलते हुए ईमानदारी से जीवन यापन करता है। वह दीन हीन निर्धन गरीब बेबस मजदूर मजलूम विधवा विकलांग असहाय निसहाय दलित शोषित वंचित किसान कामगार मजदूर हो सकता है कि जाति धर्म भाषा प्रांत लिंग गोत्र संप्रदाय समुदाय के नाम पर धोखा देने वाला प्राणी नहीं हो सकता, अनाचारी दुराचारी भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता, वह असत्य अधर्म अन्याय का पालक नहीं हो सकता। अनाचारी दुराचारी भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता, वह एक ईमानदार कर्तव्य पालक झंझावतों को झेलने वाला कंदन रुदन करते हुए भी सबकी भला सोचने वाला मानवता से युक्त होता है। स्वतंत्रता के पश्चात लघु मानव ने बड़ी कल्पना उत्साहित हुई, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में लघु मानव ने ही सर्वाधिक कुर्बानी दी। जैसे मानव लघु मानव मात्र मरने के लिए गोली खाने के लिए ही पैदा हुआ हो। लघु मानव नई कविता के कवियों का प्रिय विषय वस्तु भाव पक्ष का दर्शन रहा है। साम्यवाद समाजवाद जनतांत्रिक समाजवाद गांधीवाद आदि नई कविता के कवियों का मूल सत्य बन गया। लघु मानव मानवीय मूल्यों के प्रति संघर्ष करता हुआ दिखलाई पड़ता है। दूसरी ओर वह कष्ट दुख पीड़ा वेदना दर्द तीस तनाव झेलता हुआ जीवन जीता है। यही लघु मानव की सबसे बड़ी त्रासदी है। लघु मानव रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा मनोरंजन एवं कल्याण जैसे सप्त तत्कालिक आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करता हुआ नजर आता है। उसकी तत्कालिक आवश्यकताएं ही उसके जीवन का मूल उद्देश्य बन जाती हैं, किंतु वह रोटी भी नहीं जुटा पा रहा है। जब भी वह संघर्ष के लिए आगे बढ़ता गोली खाता है, जैसे कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने पिछड़ी आदमी कविता में लिखते हैं, जब सब बोलते वह चुप रहता है, जब सब चलते वह पीछे हो जाता था, जब सब खाने पर टूटते थे वह अलग बैठा टूंगता रहता था, जब सब निढाल हो सोते थे वह शून्य में टकटकी लगाए रहता था, लेकिन जब गोली चली तब सबसे पहले वही मारा गया। यही है लघु मानव की वास्तविक स्थिति। वह सत्य के लिए जीता है, धर्म के लिए जीता है, न्याय के लिए मरता है, किंतु वह बाह्य आडंबरी समाज में वह मात्र मरने के लिए जीता है। नई कविता लघु मानव को लेकर नव क्रांति का बिगुल बजाता है। जलतांत्रिक देश में वास्तविक जनता का प्रतीक बनता है। नई कविता के कविवृंदों ने लघु मानव के परमाक्षा को ही राष्ट्रीय जनेक्षा माना है। उसकी चिरत्कार ही क्रांति है, उसका क्रंदन ही इतिहास है।